हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि जिस तरह का बर्ताव अभी उसने आकांक्षा के साथ किया था, वो अंदर अंदर उन्हें थोड़ी शर्म और पछतावे का एहसास करा रहा था। वो उठकर वहाँ से बाहर बालकनी में चला गया और दोनों के बीच की अधूरी खामोशी और गहरी हो गई। वहीं आकांक्षा ने जैसे ही सिद्धार्थ को जाते देखा, उसे अंदर अंदर बहुत बुरा लगा, लेकिन दरवाजे पर किसी के आने से ये सारा मामला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। वो तुरंत गुस्से और झंझलाहट के साथ दरवाज़ा खोलती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि सामने कोई और नहीं बल्कि रणविजय खड़ा हुआ था। रणविजय को देखकर आकांक्षा ने जल्दी से अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को थोड़ा ठीक किया और उसकी ओर देखकर बोली थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से यहाँ आने की? यहाँ बोलो। तभी रणविजय आकांक्षा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला था, तुम जानती हो मेरा कभी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज तुम पूरे समाज के सामने सिद्धार्थ खुराना की आधी बीवी बन चुकी हो, यानी कि तुम्हारी उससे सगाई हो चुकी है। न जाने क्यों अब मेरा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का दिल कर रहा है। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा होने वाला पति संभल कर कहीं खड़ा हुआ है, लेकिन एक सेकंड। ये बोलते ही अचानक रणविजय ने आकांक्षा के बाल पकड़ लिए और उसके होठों को बड़ी बेदर्दी से चूम लिया था। उस झटके का असर इतना तेज था कि वो बिल्कुल वाइट पड़ गई थी, जिससे आकांक्षा के होठों से खून तक रिसने लगा था। वो दर्द और गुस्से से भरकर बस चीख ही पाई। वहीं रणविजय बेशर्मी से बोला था, वाकई किसी और की होने वाली बीवी को किस करने का मजा कुछ अलग ही लेवल का होता है। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वहीं आकांक्षा सब कुछ सहकर खून का घूंट पीकर रह गई थी। एक तो उसके आने से सिद्धार्थ के साथ उसका जो पल होने वाला था वो खत्म हो गया और ऊपर से वो उसे दर्द देकर चला गया। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ कमरे के अंदर आया और उसने आकांक्षा के होठों के पास निकला हुआ खून देखा। वो चौंक गया और बोला था, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब आकांक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, क्या सिद्धार्थ, इतनी जल्दी तुम भूल गए? हमारे बीच अभी जो हो रहा था ये उसी की निशानी है। जैसे ही आकांक्षा ने ये बात सिद्धार्थ पर डाली, सिद्धार्थ थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन फिलहाल बिना कुछ कहे वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। वहीं आकांक्षा ने अपने आप को थोड़ा संभालने के लिए अपने होठों के पास मेकअप अप्लाई किया, खुद को ठीक किया और अच्छी तरह से परफेक्ट दिखने के बाद अपने बाल वगैरह ठीक किया। फिर वो बाहर आकर पार्टी में शामिल हो गई। वहीं सभी लोग खाना वगैरह खाने के बाद पार्टी कम्प्लीट होने पर जाने लगे थे। आकांक्षा भी अपने परिवार के साथ जाने लगी, लेकिन जाने से पहले वह सिद्धार्थ के गले से मिली और बोली थी, आज जो कुछ अधूरा रह गया है हम उसे बहुत जल्द पूरा करेंगे। ये बोलकर वो वहां से चली गई। वहीं सिद्धार्थ उसकी बातों का मतलब पूरी तरह समझ गया था, लेकिन उसके मन में अजीब से जज्बात उमड़ रहे थे। वो अब आकांक्षा को क्या बताता कि झलक समझकर ही वो उसके करीब आया था, और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी लड़की झलक नहीं है, तो उसे कितना बुरा लगा था। अब धीरे धीरे उसने अपने जज्बातों पर कंट्रोल किया और वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं रणविजय दादी के साथ मिलकर खुद ही आकांक्षा और उसके परिवार को गाड़ी तक छोड़ने गया। आकांक्षा के जाने के बाद उसने दादी को गले लगाकर कहा, बहुत अच्छा दादी, अब जल्दी से जल्दी इन लोगों की शादी कर दीजिए, क्योंकि मेरा भी अब जाने का वक्त आ चुका है। मेरे बिजनेस का काफी नुकसान हो चुका है, तो मुझे फटाफट अपना बिजनेस संभालना होगा। अब रणविजय के जाने की बात सुनकर दादी तड़प गई और बोली थी, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मुझे तो आदत हो गई है तुम्हारे साथ रहने की। तुम्हें पता है इस बड़े से घर में मेरी जिंदगी कैसे अकेले गुजर रही है। सिद्धार्थ तो हमेशा अपने अपार्टमेंट में रहा करते थे, अभी कुछ दिनों से ही वो यहाँ रहने आए हैं और अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। वैसे भी बुढ़ापे में मुझे तुम दोनों पोतों की बहुत जरूरत है, इसलिए तुम दोनों को मेरे साथ ही रहना होगा। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी भी शादी कर दूँ और उसके बाद हम सब एक पूरे परिवार की तरह यहाँ साथ साथ रहेंगे। दादी की ये बातें सुनकर रणविजय बस मुस्कुरा कर रह गया और मन ही मन बोला, मैं तो तुम्हारे बड़े पोते यानी सिद्धार्थ खुराना की बीवी से ही काम चला लूंगा दादी। ये सोचकर रणविजय मन ही मन अंदर चला गया था। वहीं दूसरी ओर झलक ने पूरी मेहनत और लगन के साथ खुद को बदलना शुरू कर दिया था। उसने जल्दी जल्दी कुछ क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। साथ ही अनामिका ने अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स झलक के लिए अरेंज किए थे जो उसे बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, बोलचाल, व्यवहार और हर तरह की ट्रेनिंग दे रहे थे। झलक बड़ी ही सावधानी से हर चीज सीख रही थी। हालांकि आज से पहले झलक ने कभी किसी चीज को सीखने की जरूरत महसूस नहीं की थी, लेकिन अब उसके लिए वक्त बदल चुका था, उसके जज्बात बदल चुके थे। वो समझ चुकी थी कि इस दुनिया में समझदारी और लोगों की पहचान कितनी जरूरी है। वैसे भी झलक के मन में अब सिद्धार्थ, आकांक्षा, ओबेरॉय परिवार, अपना पुराना परिवार या रायचंद परिवार, किसी के लिए भी किसी तरह की नफरत नहीं बची थी। वो दिल से सबको माफ कर चुकी थी। अब वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना जानती थी और कुछ नहीं। वैसे भी झलक पहले से ही तेज दिमाग वाली और समझदार थी। उसे कई ऐसी चीजों की नॉलेज थी जो आम लोगों को नहीं होती। उसने थोड़ी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, कुछ और क्लासेस ली, सबकी गाइडेंस में खुद को और निखारा। अब झलक एक शार्प माइंडेड बिजनेस वुमन बन चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके पिताजी ने भी जो जो चीजें वक्त की कमी के कारण उसे पहले नहीं सिखा पाए थे, अब वे सारी बातें उसे सिखाने लगे थे। पूरे 10 दिनों के बाद दादाजी मुस्कुराते हुए झलक को देखकर बोले थे, अब वक्त आ चुका है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के नए सीईओ को अनाउंस करने का। दादाजी की ये बात सुनकर झलक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो सीधे अनामिका के पास गई, उसका हाथ थाम कर बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम सीईओ बनो। झलक की ये बात सुनते ही अनामिका लगभग चौंक गई, उसे तो जैसे खांसी ही आने लगी। वो बोली, ये कैसी बातें कर रही हो झलक, मतलब मैं कैसे सीईओ बन सकती हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता दादाजी तुम्हें सीईओ बनाना चाहते हैं? और वैसे भी मैं सीईओ बनने के लायक हूँ ही नहीं। सच कहूँ तो मैं ये सब नहीं चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो मुझे इस चक्कर में मत फंसाओ। तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, प्लीज प्लीज प्लीज। अनामिका की बातें सुनकर झलक ने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम सिर्फ मेरे लिए सीईओ की कुर्सी छोड़ रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम ही सीईओ बनो। मैं तुम्हारे अंडर काम करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास जिस तरह हर चीज की नॉलेज है, वो मुझमें नहीं है। झलक की इन बातों ने अनामिका का दिल भावनाओं से भर दिया। वो मन ही मन बोली, शायद पहली बार मुझे कोई ऐसी बहन मिली है जो सच में मेरे बारे में सोचती है। लेकिन फिर भी अनामिका ने झलक का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे सीईओ बनना होता तो मैं किसी भी तरह की कुर्बानी नहीं देती? नहीं झलक, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बस कुछ दिन अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। पार्टी करना चाहती हूँ, क्लब जाना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना चाहती हूँ। तुम जानती हो, मैं कभी सीईओ बनाना ही नहीं चाहती थी।
जब तुम्हारे सीईओ बनने की बात हुई, मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ, जैसे बड़ी सी तसल्ली भी मिल गई हो। मैं ये अपनी ऑफिस वाली टिपिकल लाइफ नहीं जीना चाहती। और रही बात सीईओ की, तो तुम यहाँ सीईओ और बन जाओ यार। अगर मुझे सीईओ बनना होगा तो मैं यूके वाली ब्रांच की सीईओ बन जाऊंगी, उसमें क्या बड़ी बात है। अनामिका ने ऐसे ही बात की और काफी हद तक सभी लोगों का दिल तसल्ली और भावनाओं से भर गया। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों।